आप सभी का मार्गदर्शक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम कहानी का उद्देश्य नामक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त हो रही है। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।
ही ना मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही ना मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत,
Hello, our listening friends.
नमस्कार हमारे श्रोता मित्रों.
We are so glad you joined us today.
हम बहुत आनंदित हैं कि आप हमारे साथ हैं.
I want to begin by telling you a story.
मैं आपको एक कहानी बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ.
Many years ago, there was a terrible volcanic eruption in Pompeii, Italy.
बहुत वर्ष पहले इटली के पोम्पेई में एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ.
Of the 20,000 inhabitants of Pompeii, some 2,000 lost their lives.
पोम्पेई के 20,000 निवासियों में से 2,000 लोगों की जाने गई.
Among the 2,000 people who died, there was a woman who obviously loved her jewelry above everything else.
उन 2,000 मृत लोगों में एक ऐसी स्त्री थी जो हर चीज से अधिक अपने गहनों से प्रेम करती थी.
As the deadly rain of fire came down, she decided to run to the harbor and escape by ship.
और जब आग की घातक वर्षा प्रारंभ हुई तो उसने भागकर बंदरगाह जाने और वहां से समुद्री जहाज के रास्ते बच निकलने का फैसला किया.
That was wise.
ये समझदारी थी.
But the rich and beautiful woman stayed behind just long enough to collect as much of her jewelry as she could carry.
परंतु उस सुंदर और अमीर स्त्री ने जितने गहने वो उठा सकती थी इकट्ठा करने में काफी समय लगा दिया.
Snatching up her rings, she hastily thrusted them on her fingers.
उसने जल्दी जल्दी अपनी अंगूठियों को इकट्ठा कर अपनी उंगलियों में पहन लिया.
There was no time to hunt for a box or a bag in which she could cram her precious things.
कोई संदूक या थैला ढूंढने के लिए समय नहीं था जिसमें वो अपनी बहुमूल्य चीजें डालकर ले जा सकती.
So she picked up as many as she could hold in her hands and rushed into the street.
तो जैसे ही जितना वो हाथों में उठा सकती थी उठाकर सड़क पर पहुंची.
Clutching her pearls and diamonds and rubies and sapphires, her gold brooches and her earrings.
अपने हीरे मोती जवाहरात सोने की अंगूठियां और बालियां और सारा गहना उठाए हुए.
That wealth of jewelry today would have been valued in hundreds of thousands of dollars.
उतने गहने आज हजारों डॉलर मूल्य के होते.
But she delayed too long and the poisonous fumes overcame her as she ran.
परंतु उसने इसी सब में बहुत देर कर दी और बहते हुए जहरीले लावे ने उसे दबा लिया.
With all of her wealth in hand, she stumbled and fell and died clutching the things she prized so much under the ashes of Pompeii.
अपनी सारी दौलत को हाथों में समेटे वो गिरी और मर गई और अपनी बहुमूल्य चीजों को सीने से लगाए वो पोम्पेई की राख में दफन हो गई.
How do I know that?
मुझे ये कैसे पता है?
Recently an archaeological excavation found her as she was still lovely and her hands were still laden with jewels.
कुछ ही समय पहले एक पुरातत्व खोजी ने उसे ढूंढा जैसे वो थी वैसे ही खूबसूरत और उसके हाथों में वो गहने भरे हुए.
In Mark chapter 8, Jesus said,
मरकुस 8 अध्याय में यीशु ने कहा,
What shall profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?
मनुष्य को क्या लाभ यदि वो पूरे संसार को पाले परंतु अपनी आत्मा को खो दे?
Only Jesus could ask such a question.
केवल यीशु ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता था.
For he alone knows the value of the earth.
क्योंकि वो अकेला ही धरती की कीमत को जानता है.
He alone knows where all the diamond mines are located.
केवल वो ही जानता है कि हीरे की खदानें कहां पर हैं.
He alone knows where the last nugget of gold is to be found.
केवल वो ही जानता है कि सोने का अंतिम टुकड़ा कहां मिलेगा.
He alone knows how many tons of silver were created back in Genesis.
केवल वो ही जानता है कि उत्पत्ति की पुस्तक में कितने टन चांदी की रचना की गई.
He alone knows the value of all the rubies and the sapphires.
केवल वो ही सब हीरों और नीलमों की कीमत को जानता है.
He alone knows where the last drop of oil is located.
केवल वो ही जानता है कि तेल की आखिरी बूंद कहां पर है.
He alone knows where the last undiscovered treasures are.
केवल वो ही जानता है कि अंतिम छिपे हुए खजाने कहां पर हैं.
And that is why only he could stack up all the earth's treasure on one side of the scale.
और इसलिए केवल वो ही धरती के सारे खजाने को धरती की एक तरफ इकट्ठा कर सकता है.
And place the human soul on the other side of the scale.
और दूसरी तरफ इंसान की आत्मा को रख सकता है.
And then could say, The person who trades his soul for all the wealth of the world is a prince of fools.
और फिर वो कह सकता है वो जो संसार की दौलत के लिए अपनी आत्मा का सौदा करता है वो महामूर्ख है.
What shall profit a man? Asked the Lord.
मनुष्य को क्या लाभ? प्रभु ने पूछा.
Jesus alone could ask such a question.
केवल यीशु ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता था.
Because he alone knows the value of the soul.
क्योंकि केवल वो ही आत्मा की कीमत को जानता है.
And the value of your soul drove him to weep in Gethsemane.
और आपकी आत्मा की कीमत ही उसे गतसमनी में रोने के लिए ले गई.
The value of your soul made the Prince of Glory allow himself to be beaten, slapped and spat upon.
आपकी आत्मा की कीमत के कारण ही महिमा के राजकुमार ने खुद को मार खाने, तमाचे और थूके जाने के लिए दे दिया.
The value of your soul allowed him to be crucified on a crude Roman cross.
आपकी आत्मा की कीमत के कारण ही उसने खुद को क्रूर रोमी क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए दे दिया.
The value of your soul compelled God the Son to go to Calvary and die in your place.
आपकी आत्मा की कीमत ने परमेश्वर के पुत्र को मजबूर कर दिया कि वो कलवरी जाकर आपके लिए अपनी जान दे.
And that is why these two parables in Matthew 13:44 and 45 have to do with the all important question of choosing and being in the will of God.
और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 44 और 45 पदों के इन दो दृष्टांतों का संबंध परमेश्वर की इच्छा को चुनने और इसमें बने रहने के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ है.
For those of you joining the broadcast for the first time, we are in the middle of a study of a series of parables that I call the point of the story.
आप में से जो पहली बार इस प्रसारण में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें बता दें कि हम दृष्टांतों की अध्ययन श्रृंखला के मध्य में हैं, जिसे मैं कहानी की शिक्षा कहता हूँ.
Let's listen to these parables.
आइए इन दृष्टांतों को सुने. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और उसके कारण आनंदित होकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया. फिर स्वर्ग का राज्य सच्चे मोतियों के खोजने वाले एक व्यापारी के समान है.
Let us look at the first parable.
आइए पहले दृष्टांत पर गौर करते हैं.
What Jesus is telling them was not an uncommon occurrence.
यीशु उन्हें जो बता रहा था वो कोई आम होने वाली बात नहीं थी.
Back then there were no banks or bank vaults.
उस समय कोई बैंक या बैंक लॉकर नहीं होते थे.
So they hid their treasures in a secret spot in the fields.
इसलिए वो अपने धन को खेत के किसी गुप्त स्थान में छिपा देते थे.
They buried their treasure in the ground.
वो अपने धन को जमीन में दबा देते थे.
And when they needed money to purchase food,
और फिर जब भोजन खरीदने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती,
they got out at night when no one is watching.
तो वो रात को उठते जब कोई देख रहा नहीं होता.
And they will dig out that box.
और वो संदूक को बाहर निकालते.
And they get out a piece of jewelry.
और गहने के एक टुकड़े को निकालते.
And the next day they take it to the market and sell it.
और अगले दिन इसे बाजार में ले जाकर बेच देते.
Then they use the money to buy their necessities.
और फिर उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए करते.
But what often happens is that many people have died without telling the next of kin where they buried their jewels.
परंतु अक्सर क्या होता कि बहुत सारे लोग बिना अपनी अगली पीढ़ी को बताए ही मर जाते कि उन्होंने अपना गहना कहाँ छिपाया है.
And family treasures stayed in the ground.
और पारिवारिक खजाने जमीन में ही रह जाते.
Consequently, the land of ancient Palestine was littered with treasures hidden in the ground.
परिणाम स्वरूप प्राचीन फिलिस्तीन की धरती में जमीन में छिपे खजाने बिखरे हुए थे.
As you know, ancient Palestine had been a battleground for hundreds of years.
जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन फिलिस्तीन सैकड़ों वर्षों से युद्ध भूमि रहा है.
So the farmers would bury their valuables to protect them from the invading armies of the enemy.
तो किसान अपनी कीमती वस्तुओं को शत्रु की सेनाओं से बचाने के लिए जमीन में दबा देते थे.
And some of them were never able to come back to get it.
और उनमें से कई इन्हें लेने के लिए कभी वापस नहीं आ पाते.
The rabbis had a very simple rule about people finding treasures in the land which they had bought.
रब्बियों ने उस धरती में जो उन्होंने खरीदी थी खजानों की खोज करने वालों के लिए बहुत ही साधारण सा नियम रखा था.
It was very, very simple.
ये बहुत ही साधारण था.
Finders keepers.
ढूंढने वाले रखने वाले.
The point of this parable is very clear and it is this.
इस दृष्टांत की शिक्षा बहुत ही स्पष्ट है और वो ये है.
There are some people who find the grace of God.
कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं.
And they take hold of this priceless treasure of salvation.
और वो इस उद्धार के अमूल्य खजाने को थाम लेते हैं.
There are some people who may not be searching or looking, as we will see in the next parable.
कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि खोज या तलाश में ना हो, जैसा कि हम अगले दृष्टांत में देखेंगे.
Yet when they discover the love of God and the power of God's forgiveness, they surrender their all in order to embrace it.
तो भी जब उन्हें परमेश्वर के प्रेम और उसकी क्षमा की शक्ति का पता चलता है तो वो इसे गले लगाने के लिए अपना सब अर्पण कर देते हैं.
These are the people who are in the course of going about their business discover the truth to be in Jesus.
ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हुए पता चला कि सत्य यीशु में है.
And they respond to his invitation and come to be saved from death and hell.
और वो उसके निमंत्रण का उत्तर देकर मृत्यु और नरक से बचने के लिए उसके पास आ जाते हैं.
And when their spiritual eyes are open, they grab hold of it with all of their might.
और जब उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, तो वो अपनी पूरी शक्ति से इसे थाम लेते हैं.
They commit their life and consecrate all of their possessions in order that they may be at the center of the will of God.
वो अपने जीवन को अर्पण करते हैं और अपनी सब संपत्ति को अर्पित कर देते हैं ताकि वो परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में रहें.
The second parable is very similar to this one, and yet there is one difference.
दूसरा दृष्टांत भी इसी तरह का है परंतु फिर भी एक अंतर है.
This merchant was unlike the farmer.
ये व्यापारी किसान से भिन्न था.
Why?
क्यों?
Because he was looking for the kingdom.
क्योंकि वो राज्य की खोज में था.
He was searching for the truth.
वो सत्य की खोज में था.
He was not contented with second-rate answers.
वो तसल्ली देने वाले जवाबों से संतुष्ट नहीं था.
He was not satisfied with the second best in life.
वो दूसरे दर्जे के जीवन से संतुष्ट नहीं था.
He was not fulfilled with humanistic and partial truth.
वो मानवीय और भेदभावपूर्ण सत्य से संतुष्ट नहीं था.
He was diligently seeking and looking for the truth.
वो दिल से सत्य की खोज में था.
Some of you may be seeking the truth.
आप में से कई सत्य की खोज में होंगे.
And I pray that you'll find the truth in Jesus.
और मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु में सत्य को पाएं.
So when this merchant comes upon the one and only most valuable of all pearls, he embraces it with all of his heart.
तो जब ये व्यापारी एकमात्र सबसे अनमोल मोती तक पहुंचता है तो वो पूर्ण मन के साथ इसे गले लगा लेता है.
When he discovers the truth in Jesus,
जब उसे यीशु में सत्य का पता चला,
he gives up all of his search.
वो अपनी सारी तलाश छोड़ देता है.
He gives up all of his false pursuits.
वो अपनी सारी झूठी दौड़ को छोड़ देता है.
He gives up all of their partial truth.
वो उनका सारा भेदभावपूर्ण सत्य त्याग देता है.
He gives up worshipping and serving materialism.
वो पदार्थवाद की उपासना और खोज करना त्याग देता है.
He gives up seeking after pleasures.
वो भोग विलास की खोज करना छोड़ देता है.
Why?
क्यों?
Because he has found the pearl of great price.
क्योंकि उसने बहुमूल्य मोती ढूंढ लिया है.
Pearls were highly valued gems in the ancient world.
प्राचीन काल में मोतियों का मूल्य बहुत ऊंचा था.
Even more than they are today.
यहाँ तक आज से भी ज्यादा.
Diving for pearls was extremely hazardous.
मोतियों की खोज में पानी में गहराई तक जाना बहुत खतरनाक था.
And many lost their lives.
और बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी.
Or ruined their health in trying to get the oyster that contained the rare and beautiful gem.
या उस घोंगे को पकड़ने के प्रयत्न में अपनी सेहत का नुकसान किया जिसके अंदर दुर्लभ और बहुत ही सुंदर हीरा पाया जाता था.
Both its beauty and scarcity made the pearl to be very valuable indeed.
इसकी सुंदरता और दुर्लभता मोती को कहीं अधिक मूल्यवान बनाती थी.
The Jewish Talmud speaks of pearls that are beyond price.
यहूदियों का धर्म ग्रंथ उन मोतियों के बारे में बताता है जो अनमोल थे.
Egyptians and Romans worshipped it.
मिस्री और रोमी इसकी उपासना करते थे.
It was reported that the wife of the Roman Emperor Caligula often wore a vast fortune of pearls in her hair, ears, neck, wrist and fingers.
ये बताया गया कि रोमन सम्राट कैलिगुला की पत्नी अक्सर अपने बालों, गले, हाथ और उंगलियों में मोतियों की बड़ी संख्या पहनती थी.
A pearl is the only gem that is produced from a living organism.
मोती ही एकमात्र ऐसा हीरा है जो एक जीवित प्राणी से पैदा होता है.
This is not true of any other precious stone.
किसी और बहुमूल्य पत्थर के बारे में ये सच नहीं है.
The pearl becomes precious because of the suffering and injury.
मोती कष्ट और चोट की वजह से और भी कीमती बन जाता है.
Listen to how the pearl is formed.
सुनिए एक मोती कैसे बनता है.
A grain of sand gets within the shell of the oyster.
रेत का एक कण घोंगे जो कि एक समुद्री प्राणी है उसके खोल में चला जाता है.
And through the grinding of the sand, the pearl becomes preciously beautiful.
और रेत की पिसाई के द्वारा मोती अनमोल रूप से सुंदर बन जाता है.
And it was on Calvary's criminal cross that the only perfect man that ever lived bled and died.
और कलवरी के अपराधी क्रूस पर ऐसा हुआ कि सृष्टि के सबसे सिद्ध व्यक्ति का खून बहा और वो मरा.
So that he and he alone became the most precious pearl of all.
ताकि केवल वो और वो ही सबसे अनमोल मोती बने.
So what is the point of these two stories?
तो इन दोनों कहानियों की मुख्य शिक्षा क्या है?
That salvation of the soul is the most important and precious thing in life.
कि आत्मा का उद्धार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कीमती कार्य है.
That the gospel of Jesus Christ is the most important issue in life.
कि यीशु मसीह का सुसमाचार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विषय है.
That is why Paul tells the Corinthians in 2 Corinthians 4:7, we have this treasure in earthen vessels.
इसीलिए कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4:7 में पौलुस हमें बताता है कि ये धन हमारे पास मिट्टी के पात्रों में है.
And in Ephesians 3:8 he tells us it is an unsearchable riches.
और इफिसियों की पत्री 3:8 में वो हमें बताता है कि ये अगम्य धन है.
And Jesus Christ is no ordinary treasure. He is the precious stone.
और यीशु मसीह कोई साधारण धन नहीं है, वो अनमोल पत्थर है.
He is the stone cut out of the mountain.
वो पर्वत से काटा गया पत्थर है.
He is the stone cut without hands.
वो हाथ लगाए बिना काटा गया पत्थर है.
He is the stone that the builders rejected.
वो पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने रद्द किया.
But he is the cornerstone.
परंतु वो कोने का पत्थर है.
Jesus Christ is no ordinary pearl.
यीशु मसीह कोई साधारण मोती नहीं है.
He is the pearl of great price.
वो महान मूल्य का मोती है.
Because in him and him alone you can find rest from guilt and sin.
क्योंकि केवल उसी और केवल उसी के द्वारा ही आप दोष और पाप से आराम पा सकते हैं.
In him and him alone you can find peace of mind which you cannot find in things.
केवल उसी में ही आप मन की शांति पा सकते हैं जो आपको वस्तुओं में नहीं मिल सकती.
In him and him alone you can find true eternal security which you cannot find in financial security.
केवल उसी में ही आप अनंत सुरक्षा को पा सकते हैं जो आपको आर्थिक सुरक्षा में नहीं मिल सकती.
Until you find the real treasure and pearl of great price you are the poorest of the poor.
जब तक आप असली धन और अनमोल मोती को नहीं पाते आप निर्धन से भी निर्धन हैं.
Earthly treasures and earthly pearls could be stolen or lost.
धरती के खजाने और धरती के मोती खोए जा सकते या चोरी हो सकते हैं.
But the great treasure and the pearl of great price you could never lose.
परंतु महान धन और महान मूल्य का मोती आप कभी नहीं खो सकते.
Why?
क्यों?
Because it is guaranteed by God himself.
क्योंकि खुद परमेश्वर इसकी गारंटी देता है.
Those who have discovered the treasure and pearl of great price.
वो जिन्होंने वो महान धन और अनमोल पत्थर खोज लिया है.
Dwell high above the enemy's reach.
वो शत्रु की पहुंच से बहुत ऊपर रहते हैं.
They eat the hidden manna and feed upon the bread of life.
वो गुप्त मन्ना खाते और जीवन की रोटी से जीते हैं.
They are clothed with the rich robe of Christ's righteousness.
वो मसीह की धार्मिकता का वैभवशाली वस्त्र पहने हुए हैं.
They live on the promises of God and walk on the riches of faith.
वो परमेश्वर के वादों पर जीते और विश्वास की भरपूरी पर चलते हैं.
My listening friends,
मेरे श्रोता मित्रों,
have you discovered this pearl of great price?
क्या आपने इस बड़े मूल्य के मोती को ढूंढ लिया है?
Are you willing to give up anything and everything in order to receive the Lord Jesus Christ?
क्या आप प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए कुछ भी और सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं?
It is my prayer that you would say yes.
मेरी प्रार्थना है कि आप कहें हाँ.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.
छोड़ो इन भेदभाव
खुदा की हो औलाद, एक ही खुदा की हो औलाद, दुनिया को ये दिखाओ तुम। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही प्यार करो। किसने ये तुमसे कह दिया, अपनों से ही प्यार करो, दुश्मन को भी है दो तो, दुश्मन को भी है दोस्त तो, अपने गले लगाओ तुम।
जलते चरा
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप जीवित परमेश्वर या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। और हाँ श्रोताओं, हम आपको उपहार स्वरूप एक पुस्तक भेज रहे हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शक, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम मार्गदर्शक, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है md.hindi@twr.in। एक बार फिर से सुन लीजिए, md.hindi@twr.in। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।